यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 पर 9 अक्टूबर 2001 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना वाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
पद्म स्कंद 4th अध्याय श्लोक नंबर 3 कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वाक्येन हेतुना उता संचोदिता कृष्णा कृतवा समीतं मुनि। पिछले 2 श्लोकों में हमने पढ़ा है कि शौनक मुनि जी श्रुत गोस्वामी जी को संबोधित करते हुए बधाई दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि श्रुत गोस्वामी अत्यंत भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं और उन्होंने इस भागवत के दिव्य ज्ञान को महान संत शुकदेव गोस्वामी द्वारा प्राप्त किया था। जब परीक्षित महाराज को सूचना प्राप्त हुई कि 7 दिन के पश्चात आपका अंत आ जाएगा, एक ब्राह्मण श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया था कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आ जाएगा, तो परीक्षित महाराज इस श्राप से घबराए नहीं, पर उन्होंने अपने अंत की तैयारी की। शास्त्र में कहा गया है अंते नारायण स्मृति कि व्यक्ति को इस रूप से तैयारी करनी चाहिए कि अंतिम समय में नारायण का स्मृति, भगवान की स्मृति कर सके। और भगवद गीता में कहा गया है यम यम वापी स्मरण भवा, जहाँ व्यक्ति की बुद्धि होगी मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर मृत्यु के समय हम किसी भौतिक विषय का स्मरण कर रहे हैं तो उसी रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, और अगर मृत्यु के समय परम भगवान का स्मरण कर रहे हैं उनके दिव्य कार्यकलापों का तो फिर हमें आध्यात्मिक वातावरण में जन्म प्राप्त होगा। भागवत में हम महाराज भारत की कथा पढ़ते हैं 5वें स्कंद में, जिसमें ये देखते हैं कि महाराज भारत ने सब राज्य, सुंदर पत्नी, बच्चों, धन संपत्ति सबको त्यागा, जंगल में गए और वहाँ एक हिरण के प्रति आकर्षित हो गए थे और एक समय उस हिरण को खोज रहे थे और खोजते के दौरान में कि मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें उस हिरण के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा। तो ये बहुत अवश्य है कि हम मन के द्वारा भगवान का चिंतन करें, ये नहीं कि केवल मृत्यु के समय ही चिंतन करना चाहिए, प्रयास तो ये रहना चाहिए कि हम भगवान का चिंतन सदा करें। परीक्षित महाराज को सौभाग्य था कि मृत्यु के समय वो श्रीमद् भागवत का उपदेश सुन रहे थे और ये उपदेश सुनने से इतना अधिक लाभ उठा रहे थे, इतना अधिक आनंद अनुभव कर रहे थे कि उन्हें बिल्कुल भूख भी नहीं लगी और प्यास भी नहीं लगी। 7 दिन के लिए परीक्षित महाराज ने एक बूंद पानी का भी स्वीकार नहीं किया। वो उनका भाग्य था कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उन्हें भगवत का उपदेश प्राप्त हो रहा था। तो सूत गोस्वामी जी नामेश्वराने के वन में संतों को उपदेश दे रहे हैं। नामेश्वराने में हजारों संत उपस्थित थे और एक बहुत बड़ा यज्ञ का प्रबंध किया था उन्होंने, जिसका मूल उद्देश्य ये था एक सिद्धांत की स्थापना करना जिसके द्वारा कलियुग की प्रजा का उद्धार हो सके। जो संत महात्मा हैं वो सदा समाज के सुख चिंतक रहते हैं, पर वो ये जानते हैं कि समाज को सुख केवल आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर प्राप्त हो सकता है। तो इन संत महात्माओं ने सूत गोस्वामी को अपने नेता के रूप में चुना और सूत गोस्वामी ने ये उपदेश भी प्राप्त किया था, उपस्थित थे जब वो भगवतम का उपदेश सुखदेव गोस्वामी जी दे रहे थे। तो यहाँ सोनका मुनि कह रहे हैं, उन्होंने सूत गोस्वामी को बड़ा आदर दिया और कहा कि हमें कृपा करके वो भागवत का उपदेश जो कि सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया था, और ये भागवत के उपदेश में क्या है? केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान, जैसे कि प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है ये बिल्कुल दिव्य है और किसी भौतिक कार्य से इसका कोई संबंध नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवत के आदम में ही कहा गया है, धर्म प्रोचिता कायित्वता पारमो निर्मत्सराम सता। ये जो श्रीमद् भागवत है ये उस सिद्धांत का विरोध करता है जिसके द्वारा ये सोचा जाता है कि धर्म का पालन करना चाहिए किसी प्रकार की भौतिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि कई बार या अक्सर हम धर्म के मार्ग को अपनाते हैं, किस लिए? क्योंकि ये उम्मीद है कि धर्म के द्वारा, धर्म के नियम के पालन के द्वारा अर्थ भौतिक सुख ये भौतिक सुविधा प्राप्त होगी। धर्म और धन क्यों चाहिए हमें? क्योंकि धन एक साधन बनता है इंद्रिय तृप्ति के विचारों को पूरा करने के। और जब हम अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में जुड़ने के पश्चात भी संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकते, फिर अंत में हमें क्या चाहिए? मोक्ष। इसलिए कहा गया है बिल्कुल आदम में ही कि धर्म प्रोचित कायित्वता पारमो निर्मल सराम सता। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत के संदेश को हमें स्वीकार करना चाहिए किसके द्वारा? भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा, उनके द्वारा नहीं जिन्होंने एक धंधा बना लिया है भगवत की कथा करने के लिए, धन कमाने के लिए, पर उनके द्वारा भगवत के संदेश को स्वीकार करना चाहिए जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हो और जिनका आचरण भी बिल्कुल शुद्ध हो। तो व्यासदेव जी ने, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि व्यासदेव जी ने श्रीमद् भगवत की रचना की, और जैसे कि हम पढ़ते हैं भागवतम में, व्यासदेव जी ने तो पहले एक वेद को चार भागों में बांटा, फिर उन्होंने महाभारत की रचना की, वेदांत सूत्र की, पर सब ग्रंथों की रचना करने के पश्चात भी व्यासदेव जो थे संतुष्ट नहीं थे। तो सारस्वती नदी के किनारे के तट पर बैठकर वो यही विचार कर रहे थे कि मैंने सारे शास्त्रों की रचना की है, उनके अनेक शिष्यों के सहयोग से एक वेद का विभाजन किया चार भागों में, महाभारत की भी रचना की, जैसे कि कहा गया तात्पर्य में कि साधारण व्यक्ति भी उसे समझ सकें, स्त्री शूद्र कम बुद्धि के लोग भी, अनेक कथाएं हैं उसमें। पर जब भी वो संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरी निराशा का ये कारण है। क्या कारण? कि मैंने शुद्ध भक्ति का संदेश नहीं दिया, जो कि हर व्यक्ति और परम भगवान दोनों को ही प्रिय है। व्यासदेव ने कहा, उसने सोचा, क्योंकि मैंने केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया जो कि साधारण व्यक्ति और भगवान दोनों को ही प्रिय है। और जैसे ये सोच रहे थे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर, तो वहां कौन पहुंचे? नारद मुनि जी। और फिर नारद मुनि जी ने उन्हें यही कहा, और फिर उन्होंने ये श्रीमद् भागवत के संदेश दिया। यही श्रीमद् भागवत का संदेश जो पहले ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया था, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि जी को ये संदेश आया, नारद मुनि जी के द्वारा ये संदेश व्यास देव के पास आया। तो इस प्रकार ये दिव्य ज्ञान परंपरा में आ रहा है और परंपरा द्वारा हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान क्या कहते हैं? इमाम परंपरा प्राप्त मेमान राजस्व विदु। तो ये जो श्रीमद् भगवत का ज्ञान है, इन श्लोकों में हम श्रीमद् भगवत की प्रशंसा पढ़ रहे हैं। और ये कहा गया है बड़े स्पष्ट रूप से कि जो श्रीमद् भगवत का जो ज्ञान है ये बिल्कुल दिव्य है, और इस ज्ञान को हमें स्वीकार करना चाहिए। किसके द्वारा? भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा। भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति की अनेक लक्षणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद से 12वें स्कंद तक हमें एक ही विषय का ज्ञान मिल रहा है। क्या है वो विषय? शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति को हम क्यों अपनाएं? रूप गोस्वामी जी इस विषय की चर्चा करते हैं। रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया था कि भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। रूप गोस्वामी जी अपने भाई सनातन के साथ नवाब हुसैन शाह के राज्य की देखभाल कर रहे थे, पर मजबूरन, उनकी इच्छा नहीं थी, पर मजबूरन उन्हें ये सेवा स्वीकार करना पड़ा। और जैसे ही मौका मिला उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और जब वो चैतन्य महाप्रभु जी से मिले रामकेली में, तो महाप्रभु जी ने उन्हें क्या आदेश दिया? जाओ वृंदावन। वहां जाकर उन्होंने उन स्थानों की स्थापना की जहाँ की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी, और अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की जिसमें हमें वैदिक शास्त्र का निचोड़ प्राप्त होता है। और इन अनेक ग्रंथों में भक्ति रसमृत सिंधु बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है। हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को समझने के लिए। नवरत्न दास ठाकुर जी ने अनेक सुंदर रचनाएं की हैं, जिनमें कि वो चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य स्थिति को स्थापित करते हैं। और एक बड़ी प्रसिद्ध रचना गुरंगा बजीते हवे में वो कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे अयवे अकृति। कब वो दिन आएगा जब मैं रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ सकूंगा और समझ सकूंगा? तो नरोत्तम दास ठाकुर भी तरस रहे थे उस दिन के लिए जबकि वो रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ सकें और समझ सकें। इसीलिए हम गौड़िया वैष्णवा जो कि रूप गोस्वामी जी की पीढ़ी में संप्रदाय में आ रहे हैं, उन्हें रूपनुगा भी कहा जाता है। रूपनुगा का क्या अर्थ, जो कि रूप गोस्वामी जी के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति के विषय में और भगवान के अनेक गुणों की चर्चा करते हैं। पर सबसे प्रथम वो हमें ये समझाते हैं कि शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए। इस श्लोक में हम भागवत की महिमा पढ़ रहे हैं और इस पूरे भागवत में केवल शुद्ध भक्ति के विषय की ही चर्चा है। पर शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, क्या कारण है कि हमें शुद्ध भक्ति को अपनाना चाहिए। हम भक्ति को अपनाते हैं क्योंकि हृदय में अनेक प्रकार के क्या है, अनर्थस है। हृदय में अनेक प्रकार की मैल है, गहरी मैल है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने समझाया है, चेत दर्पण मार्जनम, ये हरि नाम के उच्चारण से हृदय की जो मैल है ये दूर होती है। और महान संत ठाकुर भक्ति विनोद ने समझाया है कि चार प्रकार के अनर्थस हैं जो दूर हो सकते हैं केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम के द्वारा। और ठाकुर भक्ति जी कहते हैं कि जो अनर्थस हैं चार प्रकार के, उनसे हमें अवश्य ही बचने का प्रयास करना चाहिए। एक तो है हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य का अर्थ है जो हृदय की त्रुटियां हैं। हृदय में अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं। एक है उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना जिनका भगवान से कुछ संबंध नहीं हो, जैसे कि इंद्र तृप्ति के कार्यों के प्रति आकर्षित रहना। फिर हृदय दुर्बल्य में ये भी कहना जाता है कि हमारे में ये भावना रहती है दूसरे को धोखा दें, चापलूसी करें, दूसरे की कमजोरियों को निकालें, ये भी इस हृदय दुर्बल्य में कहना जाता है। फिर एक अगला दोष है द्वेष का विचार। द्वेष ईर्ष्या से हमें बचना चाहिए। पर द्वेष ईर्ष्या, दूसरों की कमियों को निकालना। और फिर है अपराध। जो अपराध है ये भी अनेक प्रकार के अपराध हम हैं। पहला तो अपराध है हरि नाम के प्रति अपराध। रोज सुबह हम हर मंदिर में लगभग 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं। 10 नाम अपराधों का वर्णन इसलिए करते हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए, एक दूसरे को याद दिलाने के लिए, क्या कि अगर हम यह हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें इन नाम अपराधों से बचना है। बहु जन्म खरे यदि श्रवण कीर्तना तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। जैसे कि कृष्णदास कविराज जी ने कहा है, एक दो नहीं पर एक अनेक जन्मों में आप हरि नाम का उच्चारण करते जाओ। पर अगर आप अपने आप को नाम अपराधों से नहीं बचाओगे तो हरि नाम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो अपराधों में गिना जाता है, एक है हरि नाम के प्रति जो हम अपराध करते हैं। 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिसमें 10वें नाम अपराध के दो भाग हैं। एक भाग है कि लापरवाही से जाप करना या सावधानी से जाप करना चाहिए। फिर दूसरे प्रकार का अपराध है भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुसार भगवान के विग्रह के प्रति अपराध। जैसे कि मायावादी लोग क्या कहते हैं, जब वो भगवान के आचर विग्रह को भी देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो पत्थर की मूर्ति है, तुम लोग इसे भगवान मानते हो। ये भी अपराध है। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं जिनमें से एक है आचर विग्रह। और इस आचर विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं, अपर कई हैं जो भगवान के आचर विग्रह को स्वीकार नहीं करते और कई ये सोचते हैं कि जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं क्या साधारण व्यक्ति के समान बन जाते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं, कितने प्रकार के व्यक्ति उनके शरणागत नहीं होते, चार प्रकार के व्यक्ति, न मम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यते न देवता माया परत ज्ञान अश्रम भगवान आश्रितः। तो ये चार प्रकार के व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं होते। तो पहला एक अपराध है हरि नाम के प्रति अपराध, दस नाम अपराध जिसे आप सब परिचित हो। दूसरे प्रकार का अपराध है भगवान के विग्रह, भगवान के प्रति अपराध करना, भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझना। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम, मैं साथ से आना जाना दोनों ही बिल्कुल दिव्य है, पर हम इसे नहीं मानते। हम सोचते हैं कि जब भगवान भौतिक संसार में आते हैं तो हमारे समान बन जाते हैं, ये एक दोषी विचार है। फिर भक्तों के प्रति अपराध करना, भक्तों के प्रति अपराध से भी हमें बचना चाहिए। भक्तों के प्रति अपराध को क्या बोला जाता है, वैष्णव अपराध। चैतन्य महाप्रभु जी जब सनातन गोस्वामी जी को दिव्य शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने कहा किस प्रकार भक्ति का बीज प्राप्त होता है, साधु संगत के द्वारा। बीज उगता कैसे है, श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम के द्वारा। जिस प्रकार बगीचे में आप एक बीज को बो सकते हो पर पानी पिलाने से ही बीज उगेगा, और जब ये भक्ति का पेड़ उगता है तो फिर फल पैदा करता है, और इस फल को भक्ति के फल को कोई भी खाए चबाए वो जन्म मृत्यु के बंधन से फिर मुक्त हो सकता है। पर ये जो बगीचा, ये जो भक्ति का जो सुंदर बगीचा है ये नष्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, कैसे, वैष्णव अपराध के द्वारा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव निंदा से बचना चाहिए। महाप्रभु जी ने इसकी तुलना की है किसके साथ, पागल हाथी के साथ। पागल हाथी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, पागल हाथी सुंदर बगीचे को नष्ट कर देगा, हर चीज को खराब कर देगा। उसी प्रकार जो वैष्णव अपराध है उसके द्वारा भक्ति का जो लाभ है वो मिट जाता है, इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और चौथे प्रकार का अपराध है दूसरी जीवात्मा के प्रति अपराध करना। जो भक्त है वो सब के प्रति मित्रता प्रकट करता है और किसी योनि को कष्ट नहीं देना चाहता, और वैष्णव जो है हर प्रकार के अपराध से अपने आप को बचाना चाहता है। फिर एक और प्रकार का अपराध है असत तृष्णा, उसका ये अर्थ है कि अनेक भौतिक सुविधाओं की इच्छा रखना, ये सोचना कि हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाए। कई लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्यों, स्वर्ग में इस भौतिक जगत से ज़्यादा अधिक मात्रा का सुख प्राप्त हो सकता है। फिर कई आध्यात्मिकवादियों की इच्छा होती है कि हमें आठ प्रकार की योगिक सिद्धियां प्राप्त हो। भक्ति रसमृत सिंधु में एक रूपक गोस्वामी जी आठ प्रकार की योगिक सिद्धियां की भी चर्चा करते हैं। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शंता भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशंता। कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान के भक्त जो कि निष्काम भाव से इस मार्ग में प्रवेश करें वो सदा शांत रहेंगे, और इसकी तुलना में जो दूसरे आध्यात्मिकवादी हैं जिन्हें योगिक सिद्धियां चाहिए या स्वर्ग का सुख चाहिए वो सदा अशांत रहेंगे। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो इन विषयों में ज्यादा रुचि नहीं लेते। फिर एक चौथे प्रकार का अपराध है, हम जब संक्षेप में आपको समझा रहे हैं कि तत्व विभ्रम, कि आध्यात्मिक विषयों के विषय में ठीक ज्ञान नहीं रखना। जैसे कि ये नहीं समझना कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये नहीं समझना। महाप्रभु जी ने क्या कहा है इस विषय पर, जिवे स्वरूपाय कृष्ण नित्य अध्यास, कि हम सब का स्वाभाविक स्वरूप यह है कि हम भगवान की सेवा में जुड़े रहे। पर ये नहीं समझना कि हमारा असली स्वाभाविक स्वरूप क्या है। फिर परम भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझना। आगे साधना भक्ति के विषय में ज्ञान नहीं रखना। साधना भक्ति के विषय भी रूप गोस्वामी जी चर्चा करते हैं। साधना भक्ति का अर्थ है अनेक विधियों का पालन करना और नियमों के पालन के द्वारा हृदय में जागृति उत्पन्न होगी भगवान को समझने के लिए, भगवान के सेवा में जुड़ने के लिए। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने सबसे आरंभ में कहा सदा मेरा चिंतन करो, पर फिर आगे ये भी कहा कि ये इतना सरल नहीं है, पर अगर तुम वैरी भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो मुझे समझने की इच्छा प्रकट करोगे। तो एक और प्रकार का अनर्थ है कि साधना भक्ति के विषय में अज्ञान रहना। हम जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत में जुड़ते हैं तो साधना भक्ति के विषय पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि साधना भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन करना और नियमों के पालन के द्वारा ही हृदय के जो मैल है ये दूर हो सकती है। कई बार सुनने में आता है कि हमें नियम इत्यादि पसंद नहीं आते, पर नियमों के पालन के बिना किसी प्रकार से आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर चौथे प्रकार का अपराध या दोष या अनर्थ इसमें है कि जो कार्य भक्ति के लिए प्रतिकूल है उस विषय पर अज्ञान रहना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि भक्ति के लिए क्या किस प्रकार का कार्य अनुकूल है, किस प्रकार का कार्य। केवल आंख बंद करके अज्ञानता में पलने से हम जीवन को सफल नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार हमें शास्त्रों के सहयोग से ये भी समझना है कि किस प्रकार का कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है और कौन से कार्य प्रतिकूल है। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने भगवान के शरणागत होने के 6 माध्यम बताए, जिसमें सबसे पहले क्या था, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसे त्याग। साधारण जीवन में भी हम यही अनुभव करते हैं। जैसे कि हम सब भौतिक जीवन में सब अपने स्वार्थ का ही सोचते हैं, तो अगर हमें लगे कि किसी दोस्ती या रिश्ते से कुछ लाभ हो सकता है तो हम उसे जोड़ते हैं, और अगर हमें लगे कि किसी दोस्ती या संबंध से लाभ नहीं होगा तो हम उसकी परवाह ही नहीं करते। अगर आपको पता रहे कि किसी खाने की वस्तु से सेहत के लिए अच्छा है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, अगर सेहत के लिए खराब है तो हम स्वीकार नहीं करते। धंधे में अगर कोई सौदे में नफे की संभावना है स्वीकार करते हैं, अगर नुकसान की संभावना है तो हम स्वीकार नहीं करते। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो तत्व विभ्रम इस अनर्थ के द्वारा, इसमें एक अंग इसका यह है कि जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उस विषय में अज्ञान रहना। जैसे कि रूप गोस्वामी जी ने हमें भक्ति रसमृत सिंधु के अलावा एक और बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ दिया है, जिसे हम श्री उपदेशमृत के नाम से। तो श्री उपदेशमृत में रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो वो कहते हैं कि कौन योग्य है शिष्य बनाने के लिए, है कि नहीं? और क्या कहते हैं इस विषय में? वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार पस्त वेगम। सबसे पहले श्लोक में स्पष्ट स्थापित कर रहे हैं क्या, कि वही व्यक्ति योग्य है जो कि मन और इंद्रियों को वश में ला सके। और बिल्कुल प्रथम श्लोक में स्थापित कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहे तो उसे भी यही करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रथम श्लोक में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उन्हें भी प्रयास करना पड़ेगा मन और इंद्रियों को वश में लाने के लिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया गया उपदेशमृत ग्रंथ के हर श्लोक साथ। 11 श्लोक हैं केवल, पर हर श्लोक के साथ प्रभुपाद जी ने लगभग 8-10 पेजों का तात्पर्य लिखा है, जिससे हमें क्या सूचना मिलती है कि हर श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि हमें बड़े ध्यान से हर श्लोक के हर शब्द को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल प्रथम श्लोक में ही रूप गोस्वामी जी स्थापित कर रहे हैं कि मन और इंद्रियों को वश में लाना महत्वपूर्ण है। और आगे क्या कहते हैं फिर अगले श्लोक में? क्या हरा प्रश्न जन संगा च लोलियम सद्वीर भक्ति विनश्यति। विनश्यति का अर्थ है जिसके द्वारा भक्ति नष्ट होती है। तो बिल्कुल आलम में ही रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या क्या कार्य भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो ठाकुर भक्तिनाथ जी ने भी कहा है कि यह ज्ञान नहीं रखना कि कौन से कार्य भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ये भी अनर्था है। अब समझ रहे हो? कई बार हम सोचते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम सोचते हैं कि हम अज्ञानता में रहेंगे और उसी में आनंद है, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। तो ठाकुर भक्ति जी कह रहे हैं कि ज्यादा ज्ञान नहीं रखना उन कार्यों का जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, वो भी अपराध है, और उस अपराध के कारण आप भी भक्ति में आगे फिर नहीं बन सकोगे। दूसरे शब्दों में हमें बड़े स्पष्ट रूप से ये समझना है शास्त्रों गुरु साधकों के सहयोग से कि क्या कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो रूप गोस्वामी जी ये स्थापित करें कि भक्ति के लिए क्या 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 कार्य प्रतिकूल है, और फिर आगे कहते हैं क्या अनुकूल है। जैसे उत्साह निश्चय धैर्य तत्सत्कर्म प्रवर्तन संग त्याग सद्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो ये भी समझना चाहिए कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। अब ठाकुर भक्तिनाथ जी ने इन अनर्थों की चर्चा की है, जो कि हमने आपको संक्षेप में समझाया है। अब ये सारे अनर्थ जो हैं नष्ट हो सकते हैं शुद्ध भक्ति के द्वारा, और ये श्रीमद् भागवत जिसकी महिमा हम पढ़ रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत में केवल शुद्ध भक्ति पर ही बल दिया गया है। और शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं, इस विषय की चर्चा भी रूप गोस्वामी जी करते हैं। कौन से ग्रंथ में? भक्ति रसमृत सिंधु के बिल्कुल प्रथम अध्याय में। तो सबसे पहले कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा समस्त प्रकार के जो भौतिक क्लेश हैं उनसे हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो शुद्ध भक्ति के द्वारा समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। पद्म पुराण में समझाया गया है कि जो कष्ट क्लेश हम भुगत रहे हैं ये किसका परिणाम है? पापों का परिणाम है। कई पापों का परिणाम हम भुगत चुके हैं, कई पापों का परिणाम हम भुगत रहे हैं, कई पाप का परिणाम अभी तक भुगता नहीं है पर समय के साथ उगेगा, और कई पाप अभी हैं पर समय के साथ उनका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे कि कई बार लोग पूछते हैं और कहते हैं, वो व्यक्ति तो इतना प्रकार का अपराध कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, ये दोष कर रहा है, मांस खाता है रोज, और इतनी सुख का जीवन बिता रहा है, बड़ी मोटर, बड़ा मकान सब, और हम साधु महात्मा ईमानदारी का जीवन बिताते हैं, भगवान के शिक्षा का पालन करते हैं, और हमें साधारण जीवन बिताना पड़ता है इतने कष्ट की स्थिति में। लोग कहते हैं ना, कई बार लोग पूछते हैं जब आप प्रचार करने जाओ, वो देखो विदेश में पश्चिम लोग, विदेश के लोग सब गाय का मांस खाते हैं, सब खाते हैं, और वो बड़े सुख का जीवन बिता रहे हैं, और हम देखो मांस भी नहीं खाते, ये सब नियमों का पालन करते, और हमें इतना कठिन जीवन बिताना पड़ता है। पूछते हैं ना लोग, क्या इसका क्या उत्तर है? आज जो सुख व्यक्ति भुगत रहा है पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों के कारण, पर जो हम अपराध कर रहे हैं वो सब इन सब का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये अवश्य नहीं कि अब हर अपराध का परिणाम तुरंत ही भुगतो, ये अवश्य नहीं। जैसे अगर हम भक्ति के मार्ग में भी चापलूसी करें, ये अवश्य नहीं कि आपका अपराध उसका परिणाम तुरंत ही भुगतना पड़ेगा, पर भविष्य में अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तो कई पापों का परिणाम हम भुगत चुके हैं, कई का भुगतने वाले हैं, कई थोड़ी देर बाद भुगतेंगे, और कई अभी तक लाइन में नहीं आए पर लाइन में जरूर आएंगे थोड़ी देर के बाद। तो जैसे कि पिछले हफ्ते जब हमने ये म्यूजियम खोला था मुफ्त में पहले दिन, तो बहुत लंबी लाइन थी, है ना, तो कईयों को तो आपने मकान बिल्डिंग के बाहर रखा, कईयों को फिर अंदर लाए, फिर कईयों को सिक्योरिटी के पास रखा, है ना। तो इसी प्रकार कई पाप हैं जो अभी सो रहे हैं पर थोड़ी देर बाद जगाए जाएंगे और वो भी लाइन में आ जाएंगे, अंत में भुगतना पड़ेगा सबका परिणाम। पर रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है अगर हम इस शुद्ध भक्ति के मार्ग पर प्रवेश करें। जैसे कि कितना भी घास हो, अगर आप तेल फेंकोगे तो जल जाएगा, तो इस प्रकार चाहे कितने भी पापी हो, सब पापों को हम मिटा सकते हैं शुद्ध भक्ति के द्वारा। जैसे कि एक समय प्रभुपाद जी एक भक्त को दीक्षा दे रहे थे, जो अपने भक्त बनने से पहले कसाई का काम कर रहा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा अब पाप जो है बिल्कुल बंद करो, ये अवश्य। जैसे परीक्षित महाराज ने 7 दिन के लिए व्रत रखा, हाँ, जल से पानी खाने से, तो इसी प्रकार हमें भी व्रत रखना है, पर किससे? पाप के कार्यों से। तो रूप गोस्वामी जी पहला लक्षण ये कहते हैं कि समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से छुटकारा दिला सकता है क्या, ये शुद्ध भक्ति का माध्यम। फिर ये जो शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है, ये शुभ परम सबके लिए, ये जो भी इसके संबंध में है सबको ऑस्पिशियस, सबके लिए ऑस्पिशियस है। जैसे कि हम लोग हरि नाम में जाते हैं, जब आप हरि नाम करने जाते हो शायद आप ये नहीं सोचते कि हरि नाम कीर्तन में इतनी शक्ति है कि जो भी इस हरि नाम को सुनेगा उसके द्वारा शुभारंभ लाभ प्राप्त करेगा। जब आप हरि नाम में जाते हो जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उन्हें भी लाभ पहुंचता है, क्यों? क्योंकि भगवान के दिव्य नामों को सुनकर। तो यह शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है शुभारंभ करता है सबको। फिर ये शुभ भक्ति का जो मार्ग है दिव्य आनंद प्रदान करता है हर व्यक्ति को। रूप गोस्वामी जी इस विषय पर 3 प्रकार के आनंद के साधन की चर्चा करते हैं। एक आनंद का साधन क्या है? इंद्रिय तृप्ति, भौतिक कार्य। दूसरा साधन क्या है? मर्जिंग विद द लॉर्ड। और तीसरे प्रकार का आनंद का साधन क्या है? शुद्ध भक्ति। रूप गोस्वामी जी कहते हैं दिव्य आनंद का प्रदान करता है शुद्ध भक्ति। तो कहते हैं आनंद प्राप्त करने के तीन साधन हैं। एक साधन है जिससे कि अक्सर लोग जुड़े रहते हैं, वो है इंद्रिय तृप्ति का साधन। दूसरा है मोक्ष प्राप्त करने का विचार। तीसरा है शुद्ध भक्ति द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आनंद भौतिक कार्यों के द्वारा प्राप्त होता है वो तो किसी समय भी समाप्त हो सकता है। सच बात है, किसी समय भी, चाहे आप बिल गेट्स बन जाओ या अंबानी बन जाओ, सब किसी समय भी समाप्त हो सकता है। ये बात तो सच है। और जो आनंद भगवान से ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होता है उसको अगर आप करोड़ों गुना बढ़ाओ तो भी शुद्ध भक्ति के आनंद की तुलना में बिल्कुल तुच्छ माना जाता है। और जो आनंद हमें भक्ति द्वारा प्राप्त होता है, चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? आनंद बुद्धि वर्धनम प्रति पदम तुम नाम रत स्वादनम। ये जो आनंद है केवल बढ़ते जाता है। तो हमारे मन में, हृदय में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि अगर हम शुद्ध भक्ति के मार्ग को ईमानदारी के साथ स्वीकार करें तो इसका ये परिणाम होगा कि हमें असली आनंद की प्राप्ति होगी जो केवल बढ़ते ही जाएगा। इसी विषय की स्थापना भगवान ऋषभदेव जी भी करते हैं। कौन से स्कंद में? पांचवें स्कंद में भगवान ऋषभदेव जी ने कहा तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम हृदय ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हे मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुम भगवान की प्रशंसा के लिए तपस्या का पालन करोगे तो इसके बदले में तुम्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा जो केवल बढ़ते ही जाएगा और कभी घटेगा नहीं। तो इसी विषय की स्थापना रूप गोस्वामी जी भी कर रहे हैं। फिर और ये जो जिस व्यक्ति ने हरि नाम को प्राप्त किया वह हर स्थिति में संतोष रहता है। हम चैतन्य भागवत में कथा पढ़ते हैं कि महाप्रभु जी जब संस्कृत के अध्यापक थे तो उन्होंने एक पाठशाला खोली थी जहाँ की संस्कृत का ज्ञान दिया जाता था। तो रोज जब वो अपने पाठशाला में जाते थे, एक उनके भक्त थे जिनका नाम था खोलावेट श्रीधर। खोलावेट श्रीधर भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब थे। उनका धंधा था क्या? केले के छिलकों के प्याले बनाना और फल बेचना। भगवान महाप्रभु जी उनकी दुकान में रोज आते थे, उनसे सौदा करते थे और अपनी छोटी सी आमदन का आधा हिस्सा खोला बेच सीधा बांटते थे गंगा नदी की सेवा में। उनके पास रहने के लिए एक कमरा था, पहनने के लिए एक धोती और उनके कमरे में छत भी नहीं थी। और वो सदा निरंतर दिन रात हरि नाम कीर्तन, हरि नाम का जाप करते थे दिन को रात को। उनके जो पड़ोसी हैं वो कहते थे अरे ये तो सोता ही नहीं आदमी, ये भूखा है, खाता नहीं कुछ, इसको रात को भूत सवार हो जाता है, इतनी जोर से हरे कृष्णा का जाप करता है। तो एक समय जब महाप्रभु जी ने श्रीवास ठाकुर के आंगन में अपने दिव्य रूप को प्रकट किया अपने पांच प्रसिद्ध भक्तों के प्रशंसा के लिए, तो उन्होंने सबसे पूछा क्या क्या वर चाहिए तुम्हें। जब खोला भाई श्रीधर से पूछा क्या वर चाहिए मांगो, साधारण व्यक्ति तो कहता मुझे धन दे दो। खोला भाई श्रीधर ने कहा क्या अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो यही वर दो क्या कि हर जन्म में मैं आपका सेवक रहूं। खोला भाई श्रीधर भगवान के नामों में ही बिल्कुल संतुष्ट थे। सनातन गोस्वामी के पास एक परस पत्र था, कहाँ रखा था वो परस पत्र उन्होंने? कूड़े में, कचरे के डब्बे के नीचे। और वो असली परस पत्र था, नकली नहीं। आजकल तो नकड़स पतन है सब जगह, वस्ती पड़स पतन सब। तो शुद्ध भक्ति का जो साधन है वो असली आनंद प्रदान करता है, और यही है रूप गोस्वामी जी का निर्णय। फिर आगे कहते हैं शुद्ध भक्ति का एक और लक्षण यह है कि वो कठिनाई से प्राप्त होता है, बड़ी सरलता के साथ नहीं। अगर कई बार लोग कहते हैं हमें शुद्ध भक्ति चाहिए पर हमें कोई नियम नहीं चाहिए सर, पर शुद्ध भक्ति कठिनाई से प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कहते हैं क्या गीता में, क्या कहते हैं, हाँ मनुष्य नाम सास है जो कश्चित इत्यादि से लाए, और ये भी कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंत। तो शुद्ध भक्ति जो है कठिनाई से प्राप्त होती है, क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्ति द्वारा आप भगवान को भी आकर्षित कर सकते हो, शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान आपके दास बन जाते हैं। जैसे पार्थ सारथी अर्जुन के रथ को उन्होंने चलाया, आपने तस्वीर देखी होगी कि भगवान नंद महाराज के चप्पलों को अपने सिर में उठाकर ला रहे हैं, कि नहीं? अपने भक्त की चप्पलों को अपने सिर में उठा रहे हैं। अभी दामोदर का महीना आने वाला है, भगवान ने अपनी माता को उन्हें रस्सी से बांधने की भी इजाजत दे दी, सुविधा दे दी। तो शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त होती है प्रयास करने पर, ये नहीं सोचना चाहिए कि प्राप्त नहीं होगी, पर कठिनाई के साथ। दूसरे शब्दों में जब भगवान देखते हैं कि हम श्रद्धापूर्ण हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर ये प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग पर प्रवेश करता है वो किसी प्रकार के मुक्ति का विचार भी नहीं रखता। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, न धनम न जन्म न सुंदरम काविताम वा जगदीश कमाए ममा जन्मनि जन्मेश्वरे भक्ता भक्ति रहित की। हे भगवान, मुझे हर जन्म में क्या चाहिए, केवल सेवा का मौका। ठाकुर भक्ति विनोद जी एक प्रार्थना में क्या कहते हैं, अगर आपने मुझे अगला जन्म देना है तो दीजिए, पर कहा वैष्णव के घर में, बेशक कीड़े के रूप में। तो जो कीड़े चींटियां भी वैष्णव के घर में बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें हरे नाम तो सुनने का मौका मिलता है। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं वो मुक्ति के विचार भी नहीं करते, उनके यही विचार रहता है भगवान की सेवा में जुड़े रहते। और शुद्ध भक्ति एकमात्र साधन है जिसके द्वारा भगवान को आकर्षित कर सकते हो। भगवान को आकर्षित करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, भौतिक तालीम की आवश्यकता नहीं, खूबसूरती की आवश्यकता नहीं। एकमात्र साधन क्या है, सेवा। शुद्ध भक्ति स्वीकार करने के लिए कोई भौतिक तालीम की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, जो प्रेम और भक्ति के साथ मुझे जल भी अर्पण करेगा, पत्ता भी, उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। तो संक्षेप में रूप गोस्वामी जी इन छह लक्षणों का वर्णन करते हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षणों का, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति क्यों अपनाते हैं ये भी हमें शास्त्र के द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है बिल्कुल दिव्य है, इसका किसी भौतिक विचार से कोई संबंध नहीं, और अगर हमें श्रीमद् भागवत पढ़ना है, समझना है, तो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधियों के द्वारा समझना चाहिए। कई बार आप देखते हो कि कई लोग जो कृष्ण भागवत कथा करते हैं सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ, दसवें स्कंद में भगवान की रासलीला की चर्चा करने के लिए। पर प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, अगर आपने दसवें स्कंद पर पहुंचना तो पहले प्रथम स्कंद से शुरू करो। तो जब आप दसवें स्कंद तक पहुंचोगे तो बिना शंका के आपके हृदय में ये विचार रहेगा कि परम भगवान जो हैं वो भौतिक गुणों के पार हैं। तो श्रीमद् भागवत की महिमा जारी है, और व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान देने के लिए, और उन्हें यह प्रेरणा प्राप्त हुई थी नारद मुनि जी के द्वारा। नारद मुनि जी को ये प्रेरणा प्राप्त हुई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था परम भगवान के द्वारा। तो अगर हमें शुद्ध गुरु परम गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान मिले